الحمد لله كفى، سلام على عباده الذين اصطفى. پچھلے چند دنوں سے اصلاح نفس کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اصلاح نفس کے حوالے سے ہم نے مشائخ کا یہ قول بار بار نقل کیا. مشائخ نے فرمایا، من عرف نفسه عرف ربه، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے اندر کے انسان کو پہچان لیا، اس نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا. تو در حقیقت جس نے اپنے باطنی امراض کو پہچان لیا، جس نے اپنی نفس کی بیماریوں کو پہچان لیا، اس نے ایک بڑا کمال حاصل کر لیا. اور اسی زمن میں نفس کی جو بیماریاں ہیں ان پہ گفتگو ہم نے شروع کی، اور اس حوالے سے نفس کی بیماری میں پہلی بیماری جس پہ ہم نے گفتگو کی وہ تھی دنیا کی محبت. اور چند دنوں اس پہ گفتگو کرنے کے بعد کل کی مجلس میں ہم نے نفس کی بیماریوں میں دوسری بیماری پہ گفتگو شروع کی، اور وہ ہے تکبر. اور اس حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ تکبر کو مشائخ نے فرمایا کہ یہ ام الامراض ہے. ام الامراض کا مطلب ہوا تمام امراض کی ماں. تو در حقیقت جس کے اندر تکبر ہے اس کے اندر نفس کی باقی تمام بیماریاں موجود، یہ تمام باطنی بیماریوں کی سر چشمہ ہے تکبر. اس تکبر کے حوالے سے کل کی مجلس میں ہم نے مشائخ کا ایک قول بھی نقل کیا کہ حضرات نے فرمایا کہ جس کی نظر اپنے اوپر پسندیدگی کی پڑ گئی، اللہ کی پسندیدگی کی نظر اس سے ہٹ گئی. بلکہ اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو اسی کو اپنا بندہ کہا کہ جس کے اندر عاجزی ہے، جس میں عاجزی نہیں وہ اللہ کا بندہ ہی کہا، وہ تو اپنی خواہشات کا بندہ بن گیا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. کل کی مجلس میں ہم نے ایک اور بات بھی بتائی کہ ایک امریکی سائنسدان، امریکی سائیکالوجسٹ، اس نے اس تکبر پہ تحقیق کی، اور کچھ عرصے تک تکبر اور عاجزی کے معاملے پہ تحقیق کرنے سے وہ عاجز آ گیا کہ انسان کے اندر کتنا تکبر ہے یا کتنی عاجزی ہے اس کا اندازہ لگانا اس نے کہا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ بڑھتی کم ہونے والی چیز ہے، یعنی بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو جاتی اسی انسان میں. تو اس نے کہا کسی کے انسان میں کتنی ہے اس پر تحقیق مشکل ہے. پھر اپنی تحقیق کو بڑھاتے ہوئے اپنے ساتھ اور کچھ سائیکالوجسٹ کو اس نے ملایا، اور اس عاجزی کی تحقیق میں وہ پانچ نتائج پہ پہنچے، اور اس میں سے پہلے نتیجے پہ ہم نے گفتگو کل کی مجلس پہ، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے وہ لوگوں کا ہر دل عزیز بن جاتا ہے، ہر بندہ اس کو پسند ضرور کرتا ہے. تو جو شخص یہ چاہے کہ لوگ مجھے پسند کریں اس کے لیے یہ ضروری کہ وہ عاجزی اختیار کرے. اور یہ تحقیق شدہ بات انہوں نے کی کہ جی ہم نے بہت سارے لوگوں پہ تحقیق کی، जो शख्स खुद भी मुतकब्बिर है उसको भी आजिज ही लोग पसंद है। यानी आजिज बंदे को आजिज बंदा भी पसंद करता है, मुतकब्बिर बंदा भी पसंद करता है, हर बंदा उसको पसंद करता है। नबी अलैहिस्सलात वसलाम ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़ आजिज से अल्लाह के लिए आजिज इख्तियार की, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको जरूर बुलंदियां देते हैं, अल्लाह उसको जरूर उठाते हैं, अल्लाह उसको जरूर इज्जतें देते हैं, वो हर दिल अजीज बन जाता है। तो आजी से मुतालिक पहली बात उन्होंने ये की कि ऐसा बंदा जो है वो हर दिल अजीज बनता है। और ये अल्लाह के नबी की मुबारक सिफत थी तमाम अंबिया की सिफत, और यही वो सिफत थी कि जिसकी वजह से काफिर आते और उनके दिल मोम हो जाते। और कल की मजलिस में हमने एक यहूदी का वाकया भी बयान किया कि उसने कहा कि ये हमारी किताबों में लिखा ही यही है कि नबी आखिर उस्समा जो है उनके साथ जितनी ज्यादा जहालत का मुजाहरा किया जाएगा उनकी बर्दाश्त और आजजी बढ़ती चली जाएगी। आज की मजलिस में इन मुहक्किकीन की या इन साइंसदानों की इस तहकीक के बारे की दूसरे पॉइंट पे डिस्कशन जरूरी। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि आजिज बंदा हर दिल अजीज बन जाएगा। दूसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा है कहा जी, आजिज बंदा जो है जिंदगी में स्ट्रेसेस से, जहनी दबाव से महफूज हो जाए। और इसकी वजह उन्होंने बताई कि जो शख्स आजिज़ी अख्तियार करता वो दूसरों को माफ करने में बहुत उसके लिए आसानी होती है। मुतकब्बिर शख्स दूसरे को माफ नहीं कर पाता, बल्कि आजिज़ बंदा जो है वो ज्यादा लड़ाइयां ही नहीं पकड़ता है, उसको एतराज भी कम होते हैं। मुतकब्बिर शख्स को हर छोटे बड़े काम पे एतराज शुरू हो जाता है। तो जिस बंदे में माफ करने की आदत है उसकी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, उसके दिमाग से स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। और ये माफ करना ये दीन इस्लाम में बहुत बड़ी सिफत है, बल्कि इस सिफत को हासिल किए बगैर कोई अल्लाह वाला नहीं बन सकता। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, वआफ़ीन अन-नास, लोगों को माफ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत फरमाते हैं। तो जब तक ये सिफत नहीं आएगी अल्लाह की मोहब्बत के हकदार नहीं बन सकते, अल्लाह वाले नहीं बन सकते। अल्लाह वालों की बड़ी सिफत वो यही है, वो लोगों को माफ कर देते हैं। और जो लोगों को माफ कर देता है उसको बड़े फायदे होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा फायदा ये है जहनी टेंशन से वो फारिग हो जाता है। कई मरतबा लोग उकसाते भी हैं माफ करने वाले को, कई मरतबा कहते हैं कि तू भोला है, कई मरतबा कहते हैं तू बेगैरत है कि तूने माफ कर दिया दूसरों को। मगर सच्ची बात यह कि जो दूसरों को माफ करता है वो भोला नहीं, वो आजिज है, अल्लाह का मकबूल बंदा है। और ये मुहक्किकीन कह रहे हैं कि वो अकलमंद है, उसने अपनी जिंदगी को बेहतर कर लिया, जिंदगी के स्ट्रेसेस से जान छुड़वा ली। और जो बंदा ये समझता है ना कि जी मैंने इसकी ये गलती भी पकड़ ली अब इसको माफ कर, इसकी मैंने वो गलती भी पकड़ ली अब मैंने इसको माफ नहीं करना, गलतियां पकड़ना कोई इतना मुश्किल काम है ही नहीं, क्योंकि हर बंदे में गलतियां खूब मौजूद हैं। अपनी गलती पकड़ना ये मुश्किल काम है। आज जिस बंदे की असल वजह, बड़ी वजह जो दूसरों को वो माफ करता है, वो इसलिए ही होती है कि उसकी नजर अपनी गलतियों पर होती है। तो इसलिए दूसरों को माफ करना बड़ा आसान हो जाता है, दूसरों के साथ झगड़े नहीं करना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ ये बात बतानी भी जरूरी है कि जो दूसरों को माफ करना है ना, इस माफ करने का मतलब ये है कि जो आपकी अपनी जात के साथ ज्यादती हुई है उसको माफ करना। ये नहीं कि किसी और के साथ ज्यादती हो रही है तो आप कहें, तरगीब तो दे सकते हैं, मगर ये नहीं कि आप कहें कि ठीक है जी माफी चला ही रखो, इंसाफ की कोई चीज होती। तो ये अपनी जात के साथ तो इंसाफ तो इंसान माफ करे, दूसरों के साथ इंसाफ करे। इसलिए दीन इस्लाम में काफिरों के साथ लड़ाई जंग होती है तो दीन इस्लाम का हुक्म है, वह कातिलूहुम, लड़ो खूब, उड़ा दो। इसलिए माफ नहीं करना कि ये आपकी अपनी जात के साथ लड़ाई नहीं है, वो तो काफिर आ रहा है पूरे इस्लाम को उड़ाने के लिए, आप गए इस्लाम को भी उड़ाओ तो मैंने तुझे माफ किया, ऐसे कैसे? तो फिर उसमें माफी नहीं है, तो उड़ा के रखना है, तो जान देनी है। तो माफ करने के भी पैरामीटर्स है इंसान अपनी जात के लिए, वो गलतियां दूसरों की बर्दाश्त करे, मगर हर बंदे से एक्सपेक्ट करना कि वो भी माफ कर दे। और कोई मुल्क को खत्म कर रहा है, कोई दीन को खत्म कर रहा है, उसको भी माफ कर दें, ये कहाँ की माफी है? मगर ये जरूर है कि जो शख्स अपनी जाती हैसियत तक दूसरों को माफ करने के लिए तैयार, दूसरों की गलतियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार, उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। मगर इसके लिए अपने ऐबों की तरफ नजर रखना ये बड़ा जरूरी है। मुसलमानों के एक नेक बादशाह गुजरे हैं, महमूद गजनवी, उनका एक गुलाम था। महमूद जो था वो उस गुलाम पे बहुत ज्यादा एतमाद था, उसके मशवरों पे भी अमल करता। अब गुलाम की क्या हैसियत, न पढ़ा लिखा था, न बड़े खानदान से था, न कोई बड़े ओहदे पे था, तो गुलाम ही था। मगर जो बाकी महमूद की जो काबीना थी या महमूद की जो मुकर्रब जो लोग थे, वो बड़े नाराज होते थे कि ये क्या बात हुई, बादशाह सलामत को क्या हो गया, गुलाम की बातों को इतना ज्यादा अहमियत देते हैं और गुलाम के ऊपर इतनी तवज्जो करते हैं, और हम ज्यादा तालीम याफ्ता बड़े खानदानों से हैं, ओहदे हमारे बड़े, उससे ज्यादा हमारा ओहदा है, हमारे मशवरों पे ज्यादा अमल होना चाहिए। तो एक नाराजगी थी कि जी बादशाह इस गुलाम को बहुत अहमियत देते हैं। लामा इकबाल ने भी तذकरा किया महमूद और अय्याज का, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा, बंदा ओ साहिब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो ये तारीखी बात है कि महमूद जो थे मुसलमानों के नेक बादशाह, अय्याज की बातों को बहुत मानते थे। अय्याज के बारे में खबर आई बादशाह के महल के अंदर के जी अय्याज साहब ने एक अलमारी बनाई हुई है, उस अलमारी के अंदर क्या है वो किसी को नहीं बताते हैं, अलमारी को लॉक करके रखते हैं, हर रोज अलमारी खोल के चेक करते हैं कि जो चीजें अंदर पड़ी हैं वो सही है या नहीं है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी क्योंकि किसी को दिखाते नहीं, हर वक्त उस अलमारी को लॉक करके रखते हैं। तो जरूर बादशाह के मुकर्रम हैं, तो बादशाह से जो चोरी किया हुआ सोना जवाहरात है वो इसमें रखे हुए हैं। बादशाह का एतमाद जो उन्होंने जीत लिया है तो अब उसका फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए तो किसी को देखने नहीं देते कि अंदर क्या है, किसी को वो चाबी नहीं देते, सारा वक्त जो लॉक होती है। अगर कोई ऐसी चीज होती कि जिसको वो देखने देते तो फिर तो उसका अलमारी को लॉक करने की जरूरत नहीं। आखिर तो बादशाह तक ये बात पहुंची गई कि जी जिस अय्याज पे आप इतना एतमाद करते हैं, आपका लूटा हुआ माल उसने रखा हुआ है उस अलमारी में, सारा वक्त अलमारी लॉक करते हैं, मगर हर रोज एक मरतबा उस अलमारी को चेक भी करते हैं, वो किसी को नहीं देखने देते। और बादशाह सलामत आप इतना उस पर एतमाद करके बैठे हुए थे, वैसे ही नाराजगी सबके दिल में थी सही। तो लोगों ने कह दिया कि जी ये आपके माल को लूटता है और माल उस अलमारी में जमा कर रहा है, आपने जो इतना एतमाद कर लिया गुलाम पे तो गुलामों ने तो यही करना है। बादशाह ने ये सारी बात सुनी तो बादशाह ने सबको बुलाया, अय्याज को भी बुलाया और लोगों को। अय्याज से पूछा कि जी आपकी कोई अलमारी है जिसके अंदर आप बड़ा कुछ सामान रखते हैं? ठीक बादशाह ने कहा कि जी उस अलमारी की चाबी दे। चाबी बादशाह ने ली, एक और अपने खादिम से कहा कि जाओ उस अलमारी में जो कुछ है वो निकाल के लेके आओ। वो दूसरा गया, अलमारी खोली, जो कुछ अलमारी में था वो लेके वो आ गया। जब वो चीजें ला के सामने रखी गई तो बादशाह भी हैरान, लोग भी हैरान। एक फटा पुराना कपड़ों का जोड़ा था और एक फटे पुराने जूतों का जोड़ा था। ये क्या है? तो याद रहेगा बादशाह सलामत, ये वो कपड़े हैं और वो जूते हैं जो पहन के मैं आपके पास आया। आज तो अल्लाह ने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े भी दे दिए, अच्छा अच्छा खाता भी हूँ, हर रोज इन कपड़ों और इन जूतों को देख कर अपने आप को अपनी औकात याद दिलाता हूं कि मैं क्या था और अल्लाह मुझे क्या बना दिया। तो अपने ऊपर जो नजर रखता है वो सुकून वाली जिंदगी पाता है, अपने ऐबों को जो है वो दूसरों को माफ जल्दी करता है। और आजिज बंदा अपने ऐबों पे खूब नजर रखता है तो सुकून वाली जिंदगी गुजारता है, लड़ाई झगड़े उसके कम होते हैं, जहनी सुकून ज्यादा होता है। तो मुहक्किकीन जिन्होंने ये पांच बातें आजिज से मुतालिक बताई, इन बातों को बताने के बाद उन्होंने लिखा इस दुनिया में रहने के लिए आजिजी के साथ रहना सबसे अकलमंदों वाला तरीका है। तो पांच फायदे आजिजी के उन्होंने बताया। पहली चीज उन्होंने कल की मजलिस में बयान की, आजिज बंदा जो है वो लोगों का हर दिल अजीज होता है। और आज की इस मजलिस में हमने बयान किया कि आजिज बंदा जो है उसके दिमाग पे स्ट्रेस नहीं होता, उसके दिमाग पे टेंशन नहीं होती, बेजा स्ट्रेस नहीं होता, अपने ऐबों पे नजर रखता है, दूसरों को जल्दी माफ कर देता है, तो इसलिए जिंदगी आसान हो जाती है। अल्लाह ताला हमें ये जबरदस्त सिफत नसीब फरमाए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु का बड़ा जबरदस्त कॉल, इस फील्ड में इस कॉल को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। वो फरमाते हैं कि पाक है वो जात जिसने अपने तक पहुंचने के लिए आजजी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं रखा। पाक है वो जात जिसने अपने तक पहुंचने के लिए आजजी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये नेमत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.